तफसीर शुरू करेंगे आयत नंबर 232 से। और इन सारी बातों को सुनते वक्त दिल में हकीकत में वही मोहब्बत अल्लाह ताला की कि अल्लाह तूने मुझे औरत बनाया और तूने औरत को दरपेश मसाइल को इतनी अहमियत दी। एक शख्स है, उसका इस वक्त नाम मेरे जहन में नहीं, नॉन मुस्लिम है। जब उसने कुरान पाक को पढ़ा, तर्जमे से ज़ाहिर उसने पढ़ा होगा तो समझ आई, तो उसने कहा कि अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि ये कुरान मोहम्मद ने लिखा है, नौजुबिल्ला, ये भी उसका ही गुमान है, हालांकि ये ठीक नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ज़रूर कहता कि इस किताब की राइटर कोई औरत है, कि इस किताब में औरत को इतने हकूक मिले हैं। और आज आप देखिए कि वही औरत जब वैसे अपने हकूक मांगती है या फिर अपने ही मुल्कों में रहती हुई बैनर्स हाथ में पकड़ के वीमेन राइट्स के नाम पे बड़े बड़े फोरम में खड़ी हो, तो फिर ये कितनी नाकदरी की बात है। जो बंदा खुद नहीं बोलता ना, उसके लिए अल्लाह खुद बोलता है। तो ये सबक आजकल के मेरे तो दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला की और आजजी, और ये चीज़ के हकीकत में अल्लाह ताला ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। और औरत और मर्द की बांट कोई इस तरह की बांट नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है, बल्कि इसमें हकूक और जिम्मेदारियों का फ़र्क है। बाकी दोनों अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 232। ये खाली वक्त किस लिए होता है? गौर के लिए। मेरा दिल करता है कि मेरे बोलने से पहले आप सुनने के लिए तैयार हो चुके हो। बिल्कुल, अगर मैं ही बोलती रहूँगी ना, तो आपको बस तो ऐसे फील होगा कि बस ये बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। जहाँ 3 सेकंड का भी अगर पॉज आता है ना, तो फ़ौरन अपने अंदर को खोल दिया करें कि अच्छा, मैं बग़ैर सुने देख लूँ कि यहाँ क्या है और किस तरह की ये बात अल्लाह ताला मुझे अब सुनवाने लगा। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत का इजहार दिलवाया था, वस्कुरु नेमत अल्लाह ही की सूरत में, और उसमें बता दिया कि इस्लाम के कवानीन बहुत खूबसूरत हैं। पिछले सबक में हमने तलाक का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी देखा। अब आज की इस आयत में वली यानी लड़की या औरत के घर वालों से खिताब है। आइए देखते हैं कैसे। वह इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा, और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी। किसने दे दी? मुसलमान मर्दों ने दी। यहाँ तुम कौन हो? मुसलमान मर्द हैं, बीवियों को तलाक दे दें। जब तुमने औरतों को तलाक दे दी, फबलग़ना अजलहुन्ना, फिर वो अपनी इद्दत को भी पहुँच गई। सेकंड स्टेप, तलाक के बाद इद्दत का वक्त भी पूरा हो गया। फला तादुलुहुन्ना, तो अब उनको रोको ना। ये किसको कहा जा रहा है? वलियों को कहा जा रहा है, लड़की या औरत के घर वालों को कहा जा रहा है। एक तफसीर है, दूसरी तफसीर बाद में करूंगी तो वो भी यहाँ लिख लें कि वो पहले शौहर को कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों को बारी बारी देखेंगे। किस बात से ना रोको इन औरतों को? अयन कहना अजवाज होना, कि वो निकाह कर लें अपने शौहरों से। किस बात से ना रोको कि वो अपने शौहरों से निकाह कर लें? शर्त एक है, इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ, जबकि वो राजी हों आपस में मारूफ तरीके से। अगर इस आयत को हम पहली तफसीर की रोशनी में देखें कि यहाँ खिताब वलियों से है, तो यहाँ उस शौहर की बात है जो अपनी बीवी को तलाक़े रजई दे चुका या तलाक़े बाइन हो गई, यानी एक तलाक या दो तलाक़ें देकर खामोश हो गया, और अब 3 महीने पूरे हो गए या 3 क़ुरू पूरे हो गए। इद्दत ख़त्म होने के बाद औरत अपने महके में आ गई। कुछ अरसा गुज़रा, बाकी लोगों की तरह पहले शौहर ने भी उसी औरत को निकाह का पैगाम भेज दिया। अब जब वो पैगाम देता है, तो बास दफ़ा घर वाले जो होते हैं वो आड़े आने लगते हैं। और ऐसा कई दफ़ा आपने देखा होगा कि शादी के झगड़े शुरू तो शौहर और बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन बाद में वो फिर दो ख़ानदानों का झगड़ा बन जाता है। और बास दफ़ा कुछ अरसे के बाद जब शौहर बीवी से दूर हो जाते हैं, एक उधर चला गया एक उधर, तो दोनों को एक दूसरे की कदर भी आ जाती है। उस वक़्त अगर आप करीब से जाके देखेंगे ना, किसी से भी पूछ लें, तो वो कहेंगी नहीं कोई बात नहीं, मैं सेटिंग करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, खैर है। लेकिन फिर आड़े कौन आता है? बाप, भाई, कभी मामू, कभी फूफा, कभी खालू, कभी कोई फला, लो अब हम तुम्हें वहाँ भेजें। एक तो सूरत वो होती है कि अभी इद्दत का मामला और तलाक का चला ही नहीं, झगड़े ही शुरू हो गए हैं, अना का मसला होता है। याद रखिए कि जब ऐसे झगड़ों में जिद्दम जिद्दा की कैफियत हो जाए ना, कि स्टबन हो गए, अब तो हमारी इज्जत का मसला है, लो हम अपनी एक बहन को नहीं खिला सकते, लो हम पे ये बोझल है, आ जाओ हम इसको घर ले देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब होता क्या है कि वो लड़की या औरत वापस जाना चाहती है, जाने नहीं देते। और यहाँ तो ख़ास तौर पे दूसरे निगाह की बात है। असल में यह आयत एक ख़ास मौके पे नाजिल हुई थी, हज़रत माकल बिन यसार, जैसे लफ्ज़ अकल लिखते हैं ना, आइन काफ लाम, उससे पहले मीम लगा दें तो माकल बन जाएगा, बहुत प्यारे सहाबी थे अल्लाह के रसूल सल्लम के। इन्होंने अपनी बहन का निकाह किया एक जगह, सही बुखारी की ये रिवायत है, वहाँ बात ना बन सकी, तलाक हुई, इद्दत भी गुजर गई, बहन वापस आ गई। अब जो इनके बहनोई थे, बाद में उनको एहसास हुआ कि मेरी ज्यादती थी, इन्होंने दोबारा निकाह का पैगाम दिया कि मैं उसी से शादी कर लूँ। जब माकल तक ये बात आई तो इनको गुस्सा आ गया, कहने लगे अच्छा जी, पहले तलाक दे दिया फिर करो, मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी कि तुम्हें अपनी बहन दी और तुमने उसकी ये कदर की कि उसको तलाक दे दी, और अब फिर आ गए हो कि मैं दोबारा उससे निकाह करूं, तुम्हारा अल्लाह की कसम अब मैं तुम्हारे निकाह में उसको कभी नहीं दूंगा। बस कहते हैं कि एक वाक्य इनका हुआ, एक और वाक्य, और ये बुखारी का वाक्य है, सही बुखारी में आप देख सकते हैं, एक और वाक्य जाबिर बिन अब्दुल्ला की चचाजात बहन के साथ हुआ। अब ऐसे वाक़ माशरे में, जैसे आज दिन में हज़ारों बातें ऐसी आप सुनते हैं नेट से इधर उधर, तो उस दौर में इक्का दुक्का वाक़ ऐसे हो जाते थे। तो जब ये बात पता चली, ये बात इनकी हो रही थी, अल्लाह के नबी को तो नहीं पता था कि उन्होंने कहा, लेकिन अल्लाह ने कुरान की ये आयतें नाजिल कर दी कि इनको बता दो कि फला तादलू, मत रोको अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, इन लोगों को, कि यनकिह नजवा जहन्ना, के अपने शोहरों से ही दोबारा निकाह कर लें, इजाज़त रा दो, शर्त एक है कि आप दोनों राजी हैं, दोनों ने फील कर ली अपनी गलती, दोनों को पता है कि हम गलत थे ठीक थे। और याद रखिए कि जब कोई बंदा किसी के बहुत करीब रहता है ना, तो एक वक्त आता है कि फ़र्क ही मिट जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमें उससे खैर क्या मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि शौहर बीवी के अंदर मुख्तसर जुदाई मोहब्बत बढ़ाती है, तवील जुदाई मोहब्बत की आग को ठंडा कर देती है। तो कभी कभी वो कहते हैं ना कि इसको तनख्वाह छोड़ दे, ये दिल बेचारा ऐसा ना रहे, कभी भी आपको फील होने लग जाए ना, हर वक्त तू तू हो रही है, टोका टाकी हो रही है, रोका राकी हो रही है, पॉसिबल है, कभी मर्दों का मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, कभी बीवियों को हर बात चुभ जाती है, थोड़ा सा एक पॉज ले लें, मिलने चले जाएं, कहीं वेकेशन पे चले जाएं। दो तरीके होते हैं शौहर और बीवी के दिलों को जोड़ने के, या तो तनहा हो जाएं, सबको छोड़े, बच्चे बच्चे घर में सास को पकड़ाएं, मियाँ बीवी इकट्ठे चले जाएं कहीं, यकीन करें आप देखेंगे जहाँ दिलों में अभी छोटी सी दरार आने लगी है, तो आप सिर्फ 2 दिन का वीकेंड का पैकेज लें, कहीं दूर चले जाएं, कहीं पिकनिक पे चले जाएं, कोई सी साइड सीट पाई चली जाए, कुछ भी जहाँ सिर्फ आप दोनों, आप फील करेंगे जहाज़ में बैठते ही आपके शौहर का मिजाज बदल जाएगा। पांच दफ़ा हमारी जो इर्द गिर्द की लाइफ है ना, वो बहुत इन्वॉल्विंग है, और दुख के साथ कहूँगी मैं, हालांकि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को अपनी आदत के मुताबिक बहुत पसंद करती हूँ, अकेले रहने से मिलके रहना मुझे अच्छा लगता है, कि इतने लोग हैं, उससे बात, उससे वो पका रहे हैं, आप खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं घर वाले शौहर बीवी पे, बाज़ दफ़ा शौहर कमरे में है तो बीवी को रोका जा रहा है, रोका मुंह से नहीं जाता, लेकिन तरीका ये है कि उसने जाने ही नहीं जब तक सारे काम ना हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा शौहर जो हैं वो अपने दोस्तों भाइयों में पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, तो बीवी कमरे में इंतज़ार करती है। तो जब कभी इस किस्म के हालात होना, तो थोड़ा सा पॉज ले लें, अलग हो जाएं, बल्कि आप खुद कहें, अगर आपके खुदा न खासा घर में आप देख रहे हैं बहू बेटा खिंचे खिंचे रहते हैं, चिचड़े रहते हैं, बेटी की बातें दामाद की, तो आप उनको थोड़ा सा मौका दें, जाओ अकेले थोड़ी देर, जो बच्चे मैं रखती हूँ तुम चले जाओ, जो बाहर आइसक्रीम खाओ, ये हल्की फुल्की चीज़ें मोहब्बत पैदा करती हैं। एक सूरत ये है, दोनों को तनख्वाह छोड़ दें, कोई झगड़ रहे ना, लड़ाई करे, हम तो तब जाते हैं ना ऐसी चीज़ जगहों पे जहाँ हमारे मूड बहुत अच्छे होते हैं, आप बिगड़े हुए मूड पे भेजें इनको घूमने के लिए, आप देखेंगे पॉजिटिव असर होगा। दूसरी सूरत क्या है कि बाज़ दफ़ा हालात की तलखी इस तरह की हो चुकी होती है कि अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहे, बस अब मैं तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो कहती है मैं कहाँ कर सकती हूँ, तो फिर एक वीक के लिए बेटी है बीवी है तो उसको मैके भेज दिया जाए, कहीं चले जाएं, किसी शहर में ही रहते अपने रिश्तेदार हैं उसे कि एक दिन मैं आपके साथ रह रही हूँ, आते हैं वो भी आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाएं। बस दफ़ा चेंज बहुत सारे मसाइल का हल होती है, लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के हालात थोड़े से आगे बढ़ गए, अब तलाक भी हो गई, अब आप सोचिए, यहाँ समझिएगा बहुत गहरी बात है, कि ऐसे रिश्ते जो टूटे और दोबारा वो शौहर रिश्ता डाल रहा है और बीवी भी सोच रही है कि मेरा इतर हो जाए, ये कब होगा? जब सिर्फ तलाक हुई होगी, बातें नहीं हुई होंगी दोनों तरफ से। अगर हम अपने खानदानों के मुंह सीधे ना, आप कम अज कम, मैं तो आप सबसे ये एक्सपेक्ट करूंगी अगर आप वाकई कुरान के नाते कोई निस्बत रखते हैं मुझसे भी, कि आप अपनी ज़िंदगी का ये रसूल बना लें कि मैंने किसी के इज़दवाजी मामले में नहीं आना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपकी अपनी बेटी का ही क्यों ना हो। अगर आपकी बेटी आपको फ़ोन करके आपके दामाद के बारे में दो लफ्ज़ बोलती है ना, आप कहना बेटा जब खुश होती है ना तो मुझे फ़ोन किया करो, बाकी जो अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाज़ दूसरे मुल्कों में बेटियाँ रहती हैं और मिनट मिनट की खबरें जा रही होती हैं पीछे, और फिर होता क्या है कि जब सास गुस्से में तो वो फिर बोलेगी, तो फिर वो बात करती है तो दामाद से। अब आप देखिए, अगर आप दुखी हैं, आप भाई को कहते हैं मिसाल है, तो भाई चुप रहेगा? वो तो गुर्राएगा, लो इसने क्या समझा। चाहे भाई पूछे ना, वैसे घर आ जाओ, एक वक्त का खाना खिला दें, खुशी मिल जाए, बहन जब भाई के सर पे आके बैठती है पता लग जाता है। कभी कभी बेटियां आए, मैके में आए, बच्चों को आए और साथ तोहफों के दो सूटकेस लेके आए, बहुत अच्छी लगती हैं। माँ भी प्यार करती है, बच्चे भी मामू मामू कहे कि सारा दिन बाजारों में लोग लेके फिरेंगे, जी बच्चा आया है, भांजा आया है। लेकिन जब वो बहन या बेटी आपके दर पे आके बैठ जाएगी, समझिए कि उसकी भी इज्जत गई, आपकी भी गई। कहते हैं कि शौहर के घर का दुख मैके के सुख से भी मीठा होता है। अपने घर में सूखी रोटी खाएंगे ना, इज्जत की खाएंगे। तो ये सबक, ये बातें अपने बच्चों को पढ़ा के भेजें उनके ससुराल में, और आप इन्वॉल्व ना हो। 80% खराबियां जो आज हमारे कल्चर में होती हैं उसमें घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है। लड़के की माँ अमूमन बहुत इन्वॉल्व होती है और छोटी छोटी बातों में, और सोच का फर्क है ना, वो बहू नहीं लाते, वो कामवाली लाते हैं। फिर कामवाली ठीक ना निकली तो फिर वो उसके मियाँ को कहेंगे तुम कैसी औरत ले आए। जब रिश्ते होते हैं तो दुबली पतली नाजुक खूबसूरती, वहाँ कोई दूसरी चीजें नहीं होती, लेकिन जब वो घर आती है तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं 25-30 साल वाली मेच्योर लड़की, या कम से कम 40 साल वाली एक औरत जो बहुत ज्यादा चीजों को टैकल करे। अब घर में झगड़े शुरू, पहले भोली लाए थे, अब कहते हैं चीजें आधा खाना देखो फ्रिज में से निकाल के चूल्हे पे रख देती है, फेंक देती है, जाया करती है, ये है, बच्चे ठीक नहीं देख रही, वो नहीं, क्योंकि अब लाई एक भोली भाली अल्लड़ लड़की थे। फिर अगर आपको ऐसी चाहिए थी तो आप लाते को 25-30 साल के ऊपर की, जो कम अज कम आपके मेयार पे पूरी उतरती। तो यहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला डायरेक्ट कह रहा है कि मत तुम उनको रोको, शर्त देख है कि वो दोनों राजी हैं, वो रहना चाहते हैं उनको रहने दो। आप देखिए कि इसको मैं बात करते हुए जो महसूस कर रही हूँ इस वक्त, जैसे मैग्नेट आपने देखे होंगे, हमारे पास लैब में जब हम पढ़ते थे तो इस तरह से मैग्नेट होते थे, आधा उसका एक पोल होता है और आधा दूसरा होता है। सेम दो पोल को साथ करेंगे ना तो रिपेल करते हैं, और अगर उनका रुख बदल के अपोजिट को करेंगे ना तो वो जुड़ जाते हैं। शौहर और बीवी के बीच में अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मैग्नेटिक कशिश रखी होती है। जितना आप उनको तन्हा छोड़ेंगे, उनके मामलात खुद सॉल्व करने देंगे, उनकी अकल भी चलेगी, उनका दिमाग भी चलेगा। और अगर तरबियत वैसी की हो, बेटे की तरबियत में कवामियत होनी चाहिए। आप अपने बच्चे की शादी के दूल्हा बनने और सर पे सेहरा लगने के जो ख्वाब देखती हैं, उसमें उस बच्चे को बताओ कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ग्रोसरी का बैग तुमने पकड़ के जाना है लेने, उसको नहीं भेजना, तुम कवाम हो, वो नहीं कमाएगी, तुम कमाओगे। इसी तरह बेटियों की तरबियत के दौरान आप आजजी, हम्बलनेस, मामला फहमी, बर्दाश्त, जुबान छोटी दिल बड़ा, ये दे के भेजिए, इंशाल्लाह झगड़े होंगे ही नहीं। और जब बचपन से एक ऐसा किरदार है, मैं ये भी एक इशू है, बचपन से हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल आइसोलेटेड पालते हैं, उसका कमरा, उसकी चीजें। मैंने देखा है कि कमरा तो अब बड़ी दूर की बात रह गई है, कमरा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो अब हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह 10-10 छः-छः बेडरूम के घर बनते ही हैं। एक कंप्यूटर नहीं शेयर कर पाते भाई बहन, एक वॉशरूम नहीं शेयर कर पाते। यहाँ तो मसाइल ऐसे हैं ना कि पूरे घर का बस दफा एक ही वॉशरूम होता है, लेकिन आप महसूस करके देखें कि शेयरिंग की आदत ही नहीं रही। एक बच्ची है, वो सिर्फ और सिर्फ शादी के नाम पर इसलिए खौफजदा कहती है कि मैं शेयर नहीं कर सकती कि मेरे कमरे में कोई और हो, मैं बाथरूम शेयर नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा देर लगाती हूँ। अब एक बच्ची है, अगर वो बाथरूम में 2 घंटे लगाती है तो लड़ाई तो मियाँ से सिर्फ इस पे ही हो जाएगी, अगर घर में एक बाथरूम हुआ तो। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इन चीज़ों के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अब आप तरबियत उनकी कर रहे हैं जैसे उनको शोले बना के पाल रहे हैं, मुंह से बात नहीं निकली, मानने को तैयार? क्यों बाप हर बात माने, क्यों बाप हर बात, भाई हर बात माने? क्योंकि कल शौहर नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो फिर मोटे मोटे आंसू, और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने बच्ची को ज़रा लाडला रखा, फिर हम कहेंगे देखो कदर नहीं की इन्होंने मेरी बच्ची की, देखो ये कर दिया, क्या था उसको बाहर ले जाते देते, तो जो कुछ करना है आप तरबियत में कर लें, उसके बाद अल्लाह तू जान तेरे बंदे हैं, मैं अपने कामों में लगी हूँ। शादी के बाद आप यूं अपने बच्चों को छोड़ दें कि जैसे जो परिंदे होते हैं अपने छोटे बच्चे जब उनके उड़ जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी मिल जाते होंगे तो मिल जाते होंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं अब बीच में रुकावटें ना बनो। ला तअदुलू हुन्ना यन्किह नज़वाजा हुन्ना, अगर वो करना चाहते हैं इज़ा तरादु बैनम बिल मारूफ, मारूफ तरीके से वो करना चाहते हैं आपस में मामला, तो नो प्रॉब्लम। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए ईमान से जोड़ दिया, इस बात की नसीहत की जाती है किसको, मुझे और आपको? नहीं, मुझे और आपको असर नहीं होना, सिर्फ उसको होगा मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो तुम में से ईमान रखता है अल्लाह और कियामत पर। ये क्या बात हो गई, नसीहत का ताल्लुक ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखिरा से क्यों हुआ इस टेक्स्ट में जहां बात हो रही है? ये भी तो कहा जा सकता था ना कि ओ माँ बापो ये ना किया करो, भाइयों ये ना किया करो, लेकिन मन का ना यूमिनु बिल्ला वल यौमिल आखिर। देखिए इतना गहरा नुक्ता है ना इज्तमाही मामलात में, यानी जिसको आप कहें कि इंसान के जो मामलात है ना, ये मैटर्स वाला हम लड़ी खोल रहे हैं ना आजकल, वही जो शुरू से आ रहा है कि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं इस्लाम के मामलात पढ़ रहे हैं, अब उसमें जो जिसके भी हैं, इसमें खूबसूरती और हुसन आ नहीं सकता जब तक नीचे से जड़ में ईमान बिल्ला पक्का नहीं है। अल्लाह को वारिस समझ के अल्लाह ही घरों को बनाता, घरों को तोड़ता, बसाता है, इस पे जितना ईमान आपका होगा उतना आप अपने मामलात को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और देखिए वल यौमिल आखिर है ना, इसकी क्या तवजीह है कि जब तक आपको आखिरत की पकड़ का डर नहीं होगा आप दूसरे फरीक पे ज्यादती करने से नहीं रुकेंगे। जब जुबान बोलती है तो रुकती है कहीं, कभी आप कैंची ना पकड़े तो ना पकड़े, लेकिन एक दफा अगर आपके हाथ में कैंची आ जाए तो भला क्या होता है, दिल करता है सब कुछ काट दे, बैठ के छिलके ही काटते रहते हैं लोग, कतरनों को काटते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस जुबान को तभी रोक पड़ती है जब अल्लाह पर ईमान, और मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबन अतीत, सूरह काफ की आयत है कि जुबान से जो एक लफ्ज़ निकलता है वो लिखा जाएगा। जब कभी कोई मामला बिगड़े खानदानों में तो आप जरा सोचिए तो सही, कितनों की जुबानें पकड़ी जाती हैं उस वक्त, कितना लोग बोलते हैं, वो भी जिनका कोई कंसर्न है और वो भी जिनका नहीं। बाज़ दफ़ा औरतें जहन्नुम की चक्की में पिसती रहती हैं लेकिन उसी घर में रहती हैं, वजह क्या है कि हम ये बात नहीं अपने नाम पे लेना चाहते कि इसको तलाक हो गई, या हम लोगों की बातों को फेस नहीं कर सकते। नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान दूसरों पे ज्यादती करता है। का जालिकुम अस्कालकुम, क्या जालिकुम पहले ही शौहर से दोबारा निकाह, ये ज्यादा खूबतर है, ज्यादा पाक है, वातहरू और पाकीज़ा भी है, वो क्यों भला एक और मर्द से ऐब खुले। देखिए शौहर बीवी दुख सुख के साथी होते हैं, अंतुम लिबासुल्लहुन वहुन्न लिबासुल्लकुम, पीछे हम पढ़ चुके। अब एक औरत का पर्दा एक मर्द से खुल गया, इंसान की आदत की खराबियां पता लग गई, जिस्मानी ऐब कुछ लग गया, क्या अब जरूरी है एक और मर्द के सामने खुले? यहाँ अतहर में बता दिया गया कि तुम्हारी मॉडेस्टी तुम्हारी हया का भी यही तकाजा है कि किसी दूसरे मर्द से पोल खुले बेहतर है कि एक के साथ निभा कर लो। और अगर आपने जिंदगी में ये असूल अपनी बच्चियों को दे दिया और खुद को भी, अगर आप खुद बच्चे हैं अभी, कि कभी आपको मुकम्मल इंसान नहीं मिलेगा इस दुनिया में, वो तो जन्नत का मर्द होगा और वो जन्नत की औरत होगी, इस दुनिया में कमी बेशी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई कहते हैं ना मैं इसके साथ नहीं रह सकती, कहना ठीक है ना रहो, ये बताओ कि जो इसके बाद आएगा वो क्या होगा। एक ऐसे ही कोई मामला था, तब हुआ क्या कि शादी हुई, पहले शादी नहीं होती फिर होती है तो फिर मसले शुरू होते हैं, जब शादी नहीं हुई होती ना तो लोग क्या कहते हैं किसी तरह हो जाए जैसा भी मर्द बस शादी हो जाए, क्योंकि मैं ये अपने नाम से ठप्पा नहीं बर्दाश्त कर रही कि इसकी अभी शादी नहीं हुई। मैं कहती हूँ जो बच्चियाँ अभी शादीशुदा नहीं हैं और उनकी उम्र उनके ख्याल में ज़्यादा हो गई है, वो खुशकिस्मत है उन लड़कियों से कि जो उनकी उम्र में जाके वापस आ चुकी हैं और उनके नाम के साथ सिर्फ मंगनी नहीं शादी टूटने का भी इल्ज़ाम लग गया। अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रहो, जब वक्त आएगा देखेगा, अल्लाह ने जब कोई बहुत अच्छी चीज़ देनी होती है तो पहले उससे आपको भी तो अच्छा करता है, ठीक है? अब हुआ क्या कि एक लड़की थी तो उसकी पहले से शादी जैसे आम तौर पे लड़कियों की हो जाती है उससे भी थोड़ी 1-2 साल ऊपर हुई, अल्लाह का हुक्म जो भी हुआ बाद में जो हालात हुए वहाँ उसका ख्याल था कि मुझे मसले हैं, मेरे साथ उन्होंने बात की कि क्या करें, मैंने उन्हें कहा कि आप कागज़ कलम लें, और ये हमारी पूरी काउंसलिंग है, दुख सुख के नाम पे एक प्रोजेक्ट है, जो भी फ़ोन पे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम आते हैं, तो हम उनकी जहाँ तक मुमकिन है मदद करते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप कागज़ कलम लें और बैठ जाएं, अभी लिखें या घर जाके लिखें, सारा अपना दिमाग कागज़ पे डाल दें, आज क्या हालात हैं वो लिखें, आपको इस घर में क्या मसले हैं वो सारे लिखें, कोई खैर भी है तो वो भी लिख लें, आपको इस मर्ज से ये गिले हैं, ये शिकवे हैं, ये दिस दिस सब पेपर पे लिखें। जुबानी नहीं, बहुत तंग हो, बहुत तंग हो, पूछो तो बाद में पता क्या चलता, नहीं बस वो मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते, बस इतना सा मसला होता है। यकीन करें जब आप इन वर्ड्स अपने माइंड को लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मसला ही छोटा सा है। बाद लोग बड़ा शोर मचाते हैं और जब बताने लगे ना तो बात कोई नहीं होती, तो फिर खुद ही कहते हैं हाँ बस यही बात थी लेकिन मेरे दिमाग पे इसका बड़ा बोझ था। तो खैर मैंने उन्हें कहा कि आप लिखें, फिर उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप अगले पेज पे ये लिखें कि आप इधर से छूट जाती हैं, छूट गई जान, आप अपने आप को समझे कि तलाक ले ली, व्हाट्स नेक्स्ट, वो लिखें। उसमें जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ, जो मैंने उनको एक छोटा सा नुक्ता समझाया कि सिस्टर देखें, पहले जब आपका रिश्ता हुआ था तो आप कुंवारी थी, आपकी उम्र भी निस्बतन कम थी, आपका स्टैंडर्ड जो रिश्ते आने का था वो बेहतर था ना, अब क्या होगा जब आप इस मर्द को छोड़ेंगी, लड़के को जो भी है, अब जब आप दोबारा फारिग हो गई इधर से, अब रिश्ते फिर भी आने हैं ना, करनी है ना शादी, हाँ शादी तो करनी है। तो मैंने कहा नंबर एक, आपका स्टैंडर्ड डाउन हुआ कि बढ़ा, जाहिर है कि आपकी अब उम्र भी उससे 3-4 साल और ज्यादा हो गई, दूसरी बात है कि अब आपके नाम के साथ मैरिट का ठप्पा लग गया, क्या जो रिश्ता पहले आया था, अब आम हालात में मैं अल्लाह वालों की तो बात ही नहीं करती कि जिनके लिए अल्लाह चूज करता है उनकी तो मैं नहीं बात करती, वो तो अल्लाह जो दिखा सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन दुनियादारी के नाते से अब मर्द इससे कमजोर लेवल का ही आएगा ना, तो आप अगर गुजारा कर सकती हैं तो इधर ही कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बात समझ आ गई। ये जो ऊपर का किरदार होता है ना कि लो हम कोई कम है या हमारी बेटी किसी से कम है, ये दिमाग से चीजें निकाल के भेजना चाहिए, इस तरह घर नहीं बनते। अल्लाह कहते हैं ये पाक है, ये पाकीज़ा है। और ख़ास तौर पे अब यहाँ एक और बात भी नोट कर लें जो यहाँ नहीं है लेकिन फी समाना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मौजू पे बात करने की, जब कभी भी आपके गोद में बच्चा आ जाए, बच्चे का आना यानी शादी के बाद प्रेग्नेंट होके बच्चे का मिलना, मेरी तरफ से खुदाई इशारा है कि अब इस घर को हत्तुल वसा तौर पे जोड़ के ही रखना। अपनी ख्वाहिशात के लिए बाज़ दफ़ा माँ और बाप जो होते हैं वो बच्चे को कुर्बान कर देते हैं, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमुन, अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। एक तो इसमें अस्कार लकुम का ये मानी दिया ना कि पहले ही शोहर से राज ना खुला, तो और काफी एक और भी तरीका है इसको समझने का, और वो क्या है कि आज तो शोहर वाली तो हो ना, 10 खराबियां, गालियां देता है, ऊंची बोलता है, झगड़े करता है, सो ऑन, 101 बुराई लगाओ, लेकिन तुम्हारे जिस्म के तकाजे तो पूरे होते हैं ना, चलो तुम्हें रोटी खाना तो घर में मिल रहा है ना, आज इस मर्द को छोड़ा क्या पता है कि अगला रिश्ता भी फौरन आना है कि नहीं आना, तो कहीं तुम तन्हा मुजरद बन के किसी गलत चीज पे ना चले जाओ, क्योंकि याद रखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है कि शादी के पहले की जिंदगी जो औरत और मर्द की होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, शादी के बाद की उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो चुकी होती हैं। अब एक औरत जो शादीशुदा जिंदगी गुजार चुकी है तो जब बाद में उसको फिर मुजरत रहना पड़ता है, अय्यम बन के रहना पड़ता है, तो फिर हो सकता है कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, और ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं दुनिया में कि मर्द शादी के बाद जब बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अब वो औरत 1 साल सब्र करती है, 2 करती है, 3, वो कहती है मेरे से नहीं होता, अब उसकी कंपनी खराब हो चुकी है, मर्द बाहर पैसे कमा के भेज रहा है, औरत जहाँ दूसरी चीज़ें यहाँ खरीदती है वो अपने सारे तकाजे पूरे करती है, क्या करें हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। तो अज़का लकुम वतखुर में औरत के नफसानी जज्बात की फुलफिलमेंट की तरफ भी इशारा है। फिर इसके बाद आप देखिए, ये बात तो इतनी हो गई जो बहुत ज़्यादा रिवायतों में आपको मिलेगी और तफसीरों में अक्सर यही होती है, इस आयत का एक और मफहूम भी है कि यहाँ औरत के वली यानी बाप भाई उनकी बजाय पहले शौहर को मुखातिब किया जा रहा है कि ला तादुलू हुन्ना, तुम उनको ना रोको कि वो निकाह कर लें अपने नए शोहरों से। इसमें क्या है, एक नारवा जुल्म कल भी था और आज भी है, और वो क्या है कि जब एक औरत एक जगह से फारिग हो जाती है तो फिर दूसरी जगह उसके रिश्ते की बातें चलती हैं, तो पहला शोहर, या आज हमारे कल्चर को साथ जोड़ लें तो पहला ससुराल आड़ बन जाता है उसके दूसरी जगह शादी करने में, टो रखते हैं कि अब इसकी कहाँ हो रही है। बास लोग क्या कहते हैं, तुम्हें हमने भी नहीं बसाना और आगे तुम्हारी भी कहीं नहीं करने देनी, और वो फिर उसकी बुराइयाँ और चुगलियाँ, इसमें अब वो सारी चुगलियाँ लगा लें जो एक लड़की को घर से रुखसत करते हुए होती हैं। मैं अक्सर लोगों को पढ़ती हूँ, अक्सर माओं के वो जज्बात भी नहीं काबू में आते जब वो अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर आती हैं। देख रही हैं वो तो और बात है, उसकी तो कहानी छोड़ दें। जब किसी के बच्चे की मंगनी हुई और आप जाएं जरा उसको मुबारक देने, यकीन करें ऐसे लगता है कि इनको अर्श का किंगरा मिल गया। ऐसी है, बड़ी अच्छी है, भोली है, प्यारी है, मांस लिके वाली है, हम गए तो ऐसा देखा, क्या खाना बनाते हैं क्या, ऐसे लगता है कि इनसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं। एक वो दिन जब मंगनी पक्की हो जाती है, क्योंकि वो जोड़े भी तो जा रहे हैं और जेवरात भी मंगनी में गए, और हमारे कल्चर में लड़की वाले कुर्बानियां भी बड़ी दे दे के उनकी खातिरें करते हैं। एक वो वक्त है सास के जज्बों का पूछने का, और दूसरा वक्त वो है कि जब वो उसके घर में आ गई और खुदा न खास्ता इस तरह की हालात आ गए। वही औरत जो 2 ढाई साल पहले उसकी जुबान नहीं सूख रही थी अपनी होने वाली बहू की खूबियां गिनते हुए, वो बाद में कहती, तुम्हें नहीं पता बड़ी चलाक है अंदर से, ये तो मैं आई हूं तो पता चला, ये घर आई है तो लगा है। वो पंजाबी की एक कहावत है, मुझे नहीं आती, मेरी एक मामी को बड़ी अच्छी आती है, और मैं जब कभी मूड हो ना तो मैं उनको कहती हूँ आप सुनाएं। वो उसका खुलासा कुछ ऐसे है कि जिदों मैं मंगी सी उदों मैं चंगी सी, यू नो, जब सिर्फ मेरी मंगनी तुम्हारे घर हुई थी तो मैं बड़ी चंगी थी, पैड़ी हुई मैं उदों जिदों आई तेरे बुवे, कुछ इस तरह की बात है। मैंने तो गलत सुनाया, लेकिन मकसद ये था कि जब मैं लड़की की मंगनी हुई होती है तो बड़ी अच्छी, आज बुरी इसलिए बन गई हूँ कि तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठ चुक गई हूँ। तो सारे माशर्ती मसाइल हैं जिसके ऊपर हम सबको नजर रखनी है। देखिए, हम दूसरों को तो कुछ नहीं कह सकते, अपने लिए तो नियतें कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप अपने बच्चों के रिश्तों की भी बातों के फैसले किया करें, क्या किस जगह किस तरह से करना है, और इस तरह की सारी चीज़ें जो एक लड़की को दागदार कर दें। और यकीन करें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर वो उनकी दूसरी जगह करने ही नहीं देते, उसकी बुराइयाँ। कभी आप सीरत नबवी को खोल के देखें और सहाबा का दौर देखें, एक सहाबी बीवी से नहीं बनी, तलाक दे दी, इद्दत पूरी हुई। एक और बड़े अच्छे मुखलिस सहाबी के पास जाते हैं जो आजकल अपने लिए कोई खातून देख रहे हैं कि जहाँ शादी करूं, और ये क्या कहते हैं, उसी औरत जिसको इन्होंने तलाक के जरिए छोड़ा हुआ है उसका पता देते हैं कि जाओ, मेरे ख्याल में वो औरत बहुत अच्छी है, तुम उधर निकाह का पैगाम दो। हम किसको कहते हैं कौन अच्छा, कहते हैं वो फलां बड़ा अच्छा, मेरे साथ बड़ा अच्छा है। यानी किसी को अच्छा समझने का मैार हमारे पास पता क्या है, मेरे साथ बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी खातिर करता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, मेरे से बड़ा अच्छा है। लेकिन याद रखिए, बाज़ दफ़ा दो अच्छे लोग भी नहीं आपस में चलते, तो उनके कितने खुले दिल थे कि एक सहाबी अपनी ही छोड़ी हुई बीवी को दूसरे के निकाह में दे रहा है। और आज इसका ऑपोजिट कहानी देख लीजिए तो हमें क्या दिलता है। तो हमारे लिए इस सारी बातों में जो अमल की बात है वो क्या है कि इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और जुड़े हुए दिलों को उल्फत और मोहब्बत की लड़ी में पिरोता है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ हदूद और कैद है उसको बरकरार रखता है। इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ असूल बनाने से नहीं है, उनको मनवाना और साथ ही साथ इंसान की साइकोलॉजी को समझता है। क्या ये आयत पढ़ के आपको लगा कि ये 1400 साल पुरानी आयत है? ऐसा लगता है एवर न्यू, एवर ग्रीन वाला इस्लाम है हमारा, इंसानी रवैयों और जज्बात का ख्याल रखता है। फिर दूसरी चीज़ हमें इससे जो पता चली इस आयत में से, वो क्या है कि जब कोई गुस्से में होता है ना तो उसको दूसरे की खूबियां भी खामियां ही दिखती हैं। ये तो ऐसे कि जिसके अपनी जुबान में छाला होगा ना, उसको ना भी नमक तेज होगा तो नमक तेज ही लगना है, गरम कम भी है तो उसको तो गरम ही लगना है। तो लेट देम कूल डाउन, कोई फैसला झटपट में नहीं कर देना चाहिए। और तीसरी बात इससे एक और पता चलती है कि निकाह के लिए वली की हैसियत, अल्लाह औरतों को एक ही लम्हे में कह देता, नहीं मानते ना जाके खुद कर लो। ये जो कहा ला तादुलू हुन्ना, ओ वलियो तुम ना रोको इनको, ये क्या बताता है कि वली की मुदाखलत फिर भी ज़रूरी है। ला निकाह है इल्ला बी वली, तिर्मिज़ी की रिवायत भी है कि निकाह होता ही नहीं वली के बगैर। तो लिहाजा चाहे औरत की दूसरी शादी हो रही है, यहाँ इशारतन बात समझ लें कि कुंवारी लड़की के लिए तो 100% हर चीज़ में एक एक चीज़ को, बाप नहीं तो फिर भाई, ये नहीं कि बाप नहीं मान रहा तो भाई को लेके जाके शादी कहीं कर ली, नेवर विल डू दिस। और इसी तरह ऑपोजिट, कोई नहीं मान रहा, मामू साथ थे अपनी उम्र के, थे हम उम्र उनको पकड़ के तो महरम बना के शादी करा ली उनके जरिए, ऐसा नहीं हो सकता। करीब के वली के होते हुए दूसरा नहीं होता। लेकिन ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला बिगड़ता है कि जिसमें किसी के बीच में मुदाखलत ऐसी हो जाती है, ये कुंवारी है। लेकिन जहाँ रहेगी बात अय्यम की, अय्यम कहते हैं वो औरत जो पहले शौहर देख चुकी, उसको बेसिकली और भी नाम है जो इस वक्त नहीं मैं लेना चाहती, लेकिन ये कि शादीशुदा औरत जो दोबारा अकेली रह गई, ऐसी औरत को निस्बतन अपनी बात मनवाने का इख्तियार ज्यादा है, इजाज़त फिर भी चाहिए। कुंवारी तो है ही है, मैरिड औरत भी जब दूसरी शादी करेगी तो उसको अपने वली को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो थोड़ी सी जहां दीदा हो चुकी है, तजुर्बे सह चुकी है, या उसको थोड़ी सी दुनिया की बात पता चल गई है, तो फिर उसको इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी बात करे। और अल्लाह के नबी ने कहा कि कंवारी बच्ची का भी निकाह करने से पहले उससे इजाज़त ली जाए, इज़न लिया जाए, तो कहा अल्लाह के नबी कुंवारी कैसे देगी, वो तो बोलती नहीं है। ये उस दौर की कुंवारियाँ थी ना जो बोलती नहीं थी शादी की बात, तो आपने कहा कि अगर वो चुप रहे या रो दे तो समझो कि वो खुश है, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके अपने वक्तों में जब कभी आपसे शादी की बात हुई तो आप आगे रो ही पड़े होंगे। ये तो आज का दौर ही नहीं कि अबू मैंने वहाँ करनी और अम्मा ये करनी, यकीन करें। एक माँ ने मुझे कहा कि मेरी बेटी अपने बाप को कह रही थी अब्बू जब आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो ये बात है, तो कहती मैं हैरान थी कि ये बोल क्या रही है, इसको अकल नहीं है, लेकिन मुआशरे ने बोल्ड कर दिया और उसको पता ही कोई नहीं कि बोला क्या मैंने, वो अपने बोलपन में बोल के चली गई ऊपर। बात समझने की है, रिवायात होती हैं। तो बहरहाल ना तो मजबूर करके जबर से निकाह किया जा सकता है और ना कोई खुद कर सकता है, ये बात पूरी हुई।